यह प्रवचन परम सदैव स्वामी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा दिनांक 12/12/93 दोपहर 2 बजे हावड़ा कलकत्ता में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
मनुष्य के लिए जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। पशु होते हैं वे स्वतः ही अपनी मर्यादा को जानते हैं, मर्यादा में चलते हैं। उनमें स्वाभाविक ही ऐसी शक्ति है। मनुष्य में स्वाभाविक शक्ति का स्रोत है, स्वाभाविक शक्ति का भीतर में एक संग्रह है। अगर उसको ये पहचान है तो इसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत बड़ा भारी आनंद इसको मिल जाए। बिना जाने पशुओं के समान भी ये नहीं है, पशुओं में भी पशुओं से भी नीचा है। खाना पीना सोना जगना परिवार को देखना मोह करना ये बातें तो सब में होती है। आहार निद्रा भय में समझ सामान्य में तत् पशु फिर नराना मनुष्यों में पशुओं में समान ही होता है। एक वो विवेक वो ये तो एक विवेक इसमें लक्षण है। उस विवेक के बिना पशु भी समान मनुष्य रूप है, मृगास्त्र नहीं, मनुष्य रूप से पशु है। तो विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। उसमें एक बात आपको पहले बता दें, जैसे दर्पण में मुख दिखता है तो वो मुख कैसा दिखता है कि जैसे हम पूर्वाभिमुख बैठे हैं, मानो पूर्व की तरफ हम देखते हैं तो दर्पण में दिखने वाला मुख पश्चिम की तरफ देखता है। ख्याल करना, दर्पण के सामने हम अगर पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हो तो दर्पण में दिखने वाला मुख पश्चिम की तरफ देखता हुआ दिखेगा और हमारा दाहिना होगा वह बायां होगा और हमारा बायां भाग होगा वो उसका दाहिना होगा, तो उल्टा दिखेगा। उल्टा दिखने पर भी अगर हम सावधान रहें कि दिखता ऐसे है पर है ऐसा नहीं, हम पूर्वाभिमुख हैं, ऐसा अगर हम दिखते हुए को भी न देखें सावधान रहें तो बहुत बड़ा भारी हम लाभ दे देंगे। और जैसा दिखता है वैसे ही चलेंगे तो बड़ी भारी आफत आ जाएगी। इसको चेताने के लिए शास्त्र है, संत महात्मा हुए, ऋषि महर्षि हुए, भगवान के अवतार हुए हैं, उन लोगों ने ये बात बताई है, ये समझाई है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। न रूप मस्येह तथोपलभ्यते, इसका रूप यथा वर्णितम तथा न उपलभ्यते, जैसा वर्णन किया है वैसा वृक्ष रूप से दिखता नहीं है। तो ये और तरह का है। आप जो ख्याल करें सोगा ध्यान दें, हम जिसको स्वार्थ समझते हैं कि धन ले ले, मान बढ़ाई अपना ले ले, अपना सुख ले ले, अपने पद को ऊंचा प्राप्त कर ले, ये जितना लेना चाहते हैं ना, इसका नतीजा बुरा होता है, क्योंकि दृष्टि हमारी सही नहीं है। जितना ही जितना अपना स्वार्थ का भाव रखते हैं, उतने ही उतने हम पतित होते चले जाते हैं। और त्याग का भाव रखते हैं कि दूसरों का हित हो, तो उससे हमारी उन्नति होती है। ये बड़ी भारी एक खास मार्मिक बात है। वो स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होने से ये बहुत स्वार्थ में बढ़ जाता है, तो दूसरों का नुकसान करके भी अपना लाभ करना चाहता है, औरों को पद दलित करके पदान्वित होना चाहता है, दूसरों को दुखी करके सुखी होना चाहता है, दूसरों को निर्धन करके धनवान होना चाहता है, दूसरों का तिरस्कार करके अपना सम्मान चाहता है, दूसरों की निंदा करके अपनी प्रशंसा चाहता है, तो दूसरों का पतन करके उत्थान करने की जो दृष्टि है, ये दृष्टि सही दृष्टि नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि त्यागा शांति निरंतरम गीता में लिखा है, बारहवें अध्याय के बारहवें श्लोक में, कि त्याग से अनंतर ही शांति, तत्काल शांति मिलती है। मैली से मैली चीजें चट्टी प्रसाद भी त्यागने से शांति मिलती है, अच्छी से अच्छी वस्तुएं भी त्यागने से शांति मिलती है, क्योंकि ये नाशवान है। जैसे चट्टी प्रसाद खराब चीज है तो त्यागने से शांति मिलेगी, ऐसे लोगों में मान बढ़ाई आदर सत्कार लिव्य पदार्थ भोग ये अच्छे दिखते हैं, परंतु ये मैली चीज है। इस वास्ते हमारे यहाँ जो ऊंचे ऊंचे ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने इनका त्याग किया है, दूसरों का हित किया है, औरों का उपकार किया है। जितना दूसरों का हित किया है, उतना ही उनका खुद का हित हुआ है, ऐसे इतिहास कहता है, वर्तमान में ऐसा देखने में आता है, और भविष्य भी ऐसा ही होगा, ये कायदा है। तो यहाँ हमारे को सुख दिखता है ना, आराम दिखता है भोगों में, वो दुख देने वाला है, वो शांति और आनंद देने वाला नहीं है। और यहाँ पर त्याग से वैराग्य से रहे, औरों की सेवा करे, तो सेवा में परिश्रम मालूम देता है, और दूसरों को सुख पहुंचाने में अपने को क्लेश का अनुभव होता है। अपना द्रव्य खर्च करने से अपना घाटा मालूम होता है, ऐसे दिखता ऐसे है। समझ लो, एक ही उदाहरण भाई आप समझो कि यहाँ पर जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने खर्चा किया है, उद्योग किया है, निमंत्रण दिया है, परिश्रम किया है, तब सत्संग मिला है, तो दो औरों के हित करने के लिए ऐसा आयोजन किया है, तो दूसरों का हित हुआ है, और ये बातें सुन करके धारण करेंगे तो उनका बड़ा भारी हित होगा। ऐसी विलक्षण बातें हैं भगवद गीता की, भागवत की, रामायण की, उपनिषदों की, वेदों की, पुराणों की, ऐसी ऐसी सुंदर बातें हैं, उनके अनुसार जीवन बने तो बड़ा ठीक मालूम देता है, तो वो ज्ञान इससे होता है। उसमें एक उदाहरण की बात बताता हूँ, आप लोग ध्यान दें इन बात पर, खुश थोड़ा सा मन लगा में बुद्धि को इस तरफ प्रेरित करें। हम लोगों की एक धारणा है कि हम जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, ऐसा हमको मालूम होता है, आपको हमारे को ऐसा दिखता है कि हम जी रहे हैं, पर कृपा कर थोड़ा सा ध्यान दें तो जी रहे हैं ये बात झूठी है, मर रहे हैं ये बात सच्ची है। आपको नहीं दिखे तो खुद ध्यान दे, सुने मेरी बात, बच्चा जब जन्मता है कल्पना करो कि 80 वर्ष का होने वाला है, वो 80 वर्ष तक जीवेगा फिर मर जाएगा। तो जब जन्मा है तब उसकी उम्र 80 वर्ष की है और 5 वर्ष का हो गया, क्या अब 80 वर्ष की उम्र रही है? सीधी बात है, आप ध्यान दें, कृपा इतनी कृपा करें। तो 75 वर्ष रहे, 5 वर्ष खर्च हो गए, तो 5 वर्ष खर्च हो गए मानो 5 वर्ष मर गए 80 में से। बुरा न माने, मैं कोई शाप नहीं देता हूँ, मैं कोई आपका अहित नहीं करता हूँ, नुकसान करने का मेरी नीयत है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विचार गम जी रहे तो प्रतिदिन मर रहे हैं, प्रति घंटा में मर रहे हैं, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में मर रहे हैं। जीना तो हमारा समाप्त हो रहा है और मरना हमारे नजीक आ रहा है और हम कहते हैं जी रहे हैं। ठीक ध्यान दें आप लोग तो प्रत्येक समझवा जाएगी बात। अभी जिन जिन भाइयों की बहनों की जितनी जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र हमारी नष्ट हो गई है। अगाड़ी कितना जीना है इसका पता नहीं है, परंतु जितने जी चुके हैं जीना उतने हम मर चुके हैं, ये बात सही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जितनी उम्र आ गई उतनी तो उम्र घट गई ना, तो उम्र घट रही है और मरना किसको कहते हैं? आयु घटने को ही मरना कहते हैं। तो उम्र घट रही है और मन में समझ रहे हैं जी रहे हैं, ये उल्टा दिखता है। इस वास्ते जिस काम को करना है उसको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो मृत्यु तो आ रही है। अब जीना कितना इसको कुछ पता नहीं है और एक दिन ऐसा होगा कि वो मर गए, ये बात आने वाली है, सीधी बात है एकदम। कितनी किसकी उम्र है इसका पता नहीं है, परंतु उम्र खर्च हो गई इसका पता है हमें। इतनी हमारे कमी आ गई इतनी इसका बिल्कुल पता है, साक्षात ठीक इसका ज्ञान है कि इतनी उम्र आ चुकी है, उतने तो हम मर चुके हैं, उतना तो जीवन हमारा कम हो ही गया है। और हो नहीं गया है, हो रहा है।
वो कैमरा किसने फोटो
लिए? नहीं भाई, फोटो ले लो, जो फोटो ले लो भाई उसे, और निगेटिव ले लो, कोई फोटो ना ले, कृपा करे फोटो ना ले भाई,
अंदर चले गए वो।
ले लो भैया, वो ठीक नहीं है, हमारे बिल्कुल मन के विरुद्ध है। आप योग हम लोगों को मना के यहाँ बुला करके क्या विश्वासघात करोगे? मैंने ऐसा नहीं समझा कि इतना आप आघात करोगे, तो ऐसा मत करो। यहाँ के आदमियों को चाहिए कि उनको समझा करके वो निगेटिव दे दे, उनका पैसा दे दे, निगेटिव खराब होता है उसमें पैसा दे दे, अपने खरीद लो, उसका नुकसान न हो। और कोई ऐसी चेष्टा न करे, मेरे जहाँ कहीं व्याख्यान हो उसमें कोई भी ऐसी चेष्टा न करे, आप जितने वो सुन लो, कोई करता तो उसको मना कर दो, ये बिल्कुल हमारे मन के विरुद्ध बात है। नारायण 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 नारायण, तो मेरे को बोलने दो, विघ्न मत करो। तो दिखता हमें जीना है भाई जी रहे हैं और वास्तव में मर रहे हैं, ये बात है। जिस समय आप और हम आकर के बैठे उस समय जितनी हमारी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है, चाहे 15 मिनट ही हुआ हो, 20-25 मिनट हमारे को हो गए आए हुए, तो 20-25 मिनट उम्र में घट गया और मौत नजदीक आ गई। 20-25 मिनट, आध घंटा हुई है तो आध घंटा मौत नजदीक आ गई है, जल्दी मरने वाले हैं, तो आयु खत्म हो रही है और निश्चिंत हुए बैठे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम कब करोगे? वो तो इसी में करना है और उम्र बीती जा रही है, सज्जनों बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मरने के समान अपने जीवन में कोई अनिष्ट वस्तु नहीं है, न चाहने की वस्तु, हमारे नुकसान की बात तो मौत है सबसे बढ़ करके। किसी को दंड दिया जाए तो कई तरह के गुनाह होते हैं, उसमें अलग अलग दंड देते हैं, परंतु अधिक से अधिक दंड क्या है, मृत्यु दंड है, इससे बढ़कर कोई दंड नहीं है। और क्या दंड दोगे बताओ, क्या धन लोगे, क्या कैद करोगे, क्या करोगे, मर गया, मार दिया, खत्म हो गया। वो मृत्यु आ रही है जो कोई नहीं चाहता है, वो अनिष्ट दिन आ रहा है नजीक। तो भाइयों बहनों भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सभी मरने ही मरने वाले हैं, दूसरे की रक्षा कौन करे। चाहे देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, ये जितने हैं सब खत्म हो रहे हैं, रक्षा कौन करेगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो वो दो को जा रहे, और श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर है तो वो दो को फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। वेद पुराण पुकार कर रहा है, ये मरने वालों की सहायता से हम जी नहीं सकेंगे, वो खुद ही मरने वाले क्या सहायता करेंगे हमारी। अपने कुटुंब का, अपने बेटे पोतों का विश्वास भास रखे तो वो क्या करेंगे, देवता भी बेचारे क्या करेंगे, उनकी भी उम्र है, हमारी अपेक्षा अधिक है। हमारा निर्जरा देवा ऐसा आता है, वो हमारे हमारी अपेक्षा अधिक है। वहाँ भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक में विशंति, वहाँ भी मरते हैं तो मृत्यु लोक में आ जाते हैं, गिर जाते हैं बेचारे, तो उनके भी गिरने का दिन आ रहा है, हमारे भी मरने का दिन आ रहा है। सज्जनों चेत करो, शिवाय भगवान को और कोई आपको बचा नहीं सकता। उस भगवान के नाम का जप करो, तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लव लीन, और पर धन परमन हरण को वेश्या भी परवीन। दूसरे के मन को अपनी तरफ खींच लेना, दूसरे का धन अपने संग्रह कर लेना, इसमें तो वेश्या भी बड़ी होशियार है, अपना कुछ भी खर्च न करके अपने पत्न की तरफ जा रहा है। तो दूसरों का धन और मन खींच लेना, ये अगर आप अधिक होशियार हो गए, बहुतों का धन इकट्ठा कर लिया, बहुतों का मन खींच लिया, धन खींच लिया, तो वेश्या की पदवी प्राप्त हो गई, आप भी एक वेश्या हो गए। तो क्या वेश्या होने के लिए मानव से धारण किया है, या नीचे पतन करने के जाने काम किया है। जिसकी शास्त्रों में महता दुर्लभो मानुषो देहा देहिणाक्षण भंगुर भागवत माया है, दुर्लभो मानुषो देहा, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। रामायण में आया दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये मानुष शरीर दुर्लभ साज है, भगवान की कृपा से मिल गया है, तो इसको सावधानी के साथ अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगावे। देखो गिनती की बात बताऊं, दो बात, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। ये दो है, वो ही मनुष्य है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, नाश करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, हानि करता है, वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है, वो असुर है। और भगवान को याद नहीं रखता तो वो कितना दिन जीवेगा, बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला है नहीं, और दूसरों का अपकार करता है, नुकसान करता है, तो कितना नुकसान कर रहा है वो अपना। ऐसे भाई बहनों को हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करके समझाओ कि माताओं बहनों ऐसा अन्याय मत करो, नाश मत करो, ऐसा अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, कृपा करो आप ऐसा मत करो। मैं तो प्रार्थना करके आपसे कहता हूँ, क्यों हत्या करते हो, माताएं गर्भ गिराती है, राम 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 राम, कितनी बड़ी भारी हत्या। ये स्वराज नहीं हुआ था उस समय मैं गर्भ गिरा, मैं 7 वर्ष की कैद होती थी, ऐसा मैंने सुना है। आज उनके रुपया दे दे कर गर्भ गिराते हैं, गर्भ गिराने वाले को रुपया देते हैं, उनको धन मिलता है, लोभ में आकर के काम कर रहे हैं। कलयुग का एक काम है, कलयुग में पाप की वृद्धि होती है। कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है, तो पाप से डरो, पाप मत करो। मैं तो जहाँ सत्संग होता कह देता हूँ कि जिन घरों में गर्भपात किया उस घर का अन्न हमारे को मत देता भाई। मैं भिक्षा पाता हूँ, कई घरों से रोटी मिल जाती, उसे मैं निर्वाह करता हूँ, गुजर करता हूँ। पर वो अन्न कहीं हत्या की हुई, गर्भपात की हुई घर को दो तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरा पतन हो जाएगा, आपके भी नुकसान होगा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आपको अच्छी बात कैसे सुनाऊंगा मैं, तो आपका नुकसान होगा। तो मेरे पर माता बहना कृपा करे, मेरे को अन्न जल वो उस घर का न दे। तो ऐसी ऐसी हत्या करके अपने ठीक समझते हैं। और महाराज इतनी जोरों से ये बात बढ़ गई है कि इस बात को कहते हैं तो क्या स्वामी जी समझते नहीं। मैं कहता हूँ समझते नहीं कि ज्यादा बढ़ जाएगी जनता तो क्या खाएगी। कैसी आश्चर्य की बात है, हम जन्मते हैं उससे पहले हमारे माँ के थनों में दूध आता है, पैदा हो जाता है पहले, प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अब हम दो और हमारे दो, आज के हम दो एक और हमारे एक, तो आपने जन्मना तो बंद कर दिया, मरना बंद किया है क्या? तो जन्मना बंद कर दिया और मरते रहेंगे तो शेष क्या, खत्म जयराम जी की, खत्म हो जाओगे। भजन स्मरण कौन करेगा, कौन कहेगा, कौन सुनाएगा? इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों आप लोग सावधान हो जाओ, महान हत्या से बचो, पापों से बचो। झूठ कपट करके और धन कमाते हैं वो धर्म है, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, खरीदने वालों को धोखा देकर चीज और दिखाते हैं, देते और हैं, नाप में तोल में गड़बड़ी करके धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि उनको धोखा दे रहा है। मैं आरंभ में कह चुका हूँ कैसा दिखता है औरों को धोखा, उसके धोखा थोड़ा धन का होगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको बड़ा भारी धोखा होगा। अभी दिखता है कितना हमने ठग लिया, परंतु इसका एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य होता है, एक गुणा नुकसान हजारों गुणा नुकसान आपका होगा। जरा सोच करो, थोड़ा सा लाभ है, थोड़े से लाभ के लिए ऐसा अन्याय करते हो। लाभ क्या हुआ, धन थोड़ा सा अधिक ठग लिया, तो धन तो यह रह जाएगा और ठगेगा, पाप साथ में चलेगा। मरोगा तो धन में कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, यार पाप की कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, वो आपके साथ जाएगी। धन में तो भागीदार कुटुंबी और बेटा पोता हो जाएगा, पाप में भागी कोई नहीं होगा, वो आपको खुद को भोगना पड़ेगा। थोड़ा होश में आओ, मैं सज्जनों कृपा करो, थोड़ी सी विचार करो। मानव शरीर मिला है, इतने नुकसान में क्यों जाते हो? उपकार करो तो अच्छी बात, भजन ध्यान करो तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम पतन तो मत करो, अपना नाश तो मत करो। नीचे के चुप क्या जा रहे हो, चिंता होती है अन्न की। अरे भाई पहले प्रारब्ध रेखा गया, उसमें निर्वाह हमारा होता है। पशु पक्षियों का, जंगल में रहते जानवरों का पालन पोषण होता है, चूहों का पालन पोषण होता है, पक्षियों का पालन पोषण होता है, तो मनुष्यों का पालन पोषण नहीं होगा? जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं, वर्षा अधिक होती है, तो मनुष्य होगा वहाँ अनाज पैदा नहीं होगा? आश्चर्य की बात है। बड़ा भाई मैं तो दुख होता है भाई, भविष्य क्या होगा? भविष्य में भजन ध्यान करने वाले आदमी कहाँ पैदा होंगे? ये माताओं में तो हम पैदा होते हैं, और ये हमारे को पैदा नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? ये कहाँ पैदा होंगे? और कौन सच्ची बात बताएगा? और शास्त्रों की बात कौन पढ़ेगा? किसको वक्त मिलेगा? हम दो एक और एक हमारे तो आधा ताप हो गए, 10,000 थे तो 5,000 तो हो गए पहले ही, और मरते वो कम हो ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें वंश की चिंता नहीं है, हमें चिंता है हिंदू धर्म में भगवत भजन की बात, कल्याण की बात विशेषता से है। इस बात को कौन सुनेगा और कौन कहेगा? और धर्म में ऐसी बात नहीं है, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो लोगों का उद्धार बंद हो जाएगा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, पापों से बचो।
और चोरी आदि मत करो, डके डाका मत डालो, दूसरों का धन हड़पने में चतुराई करते, ये चतुराई काम की नहीं है। एक मारवाड़ी में पद आता, थारी चतुराई में धूड़ पड़ेला, करमड़ा कथा थारा फूटे रे, जन्म लियो जन मरणो ही पड़सी मोदड़ी नगारो। ए चतुराइया में धूड़ पड़ेगा, ए जो चतुराइया है होशियारियां है कि हम धन इकट्ठा कर ले, औरों को ठग ले, हम ले ले, नतीजा भाइयों बहुत बुरा है इसका। आपके तो बात मेरी धन सस्ती करूं क्या, मेरे को बुलाया है, सुनना चाहते हो तो मेरे मन में आपके हित की होती वही बात कहूंगा, आपको धोखा नहीं देता हूं। भूल मेरी हो सकती है परंतु इसमें मेरी भूल नहीं है, शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूँ, आपके हित की बात, शास्त्रों की बात, गीता जी की बात, रामायण की, वेदों की, पुराणों की, संतों की सुनी हुई बात मैं कह रहा हूँ। तो आपका नुकसान न हो जाए अन्नदाता कृपा करो, आप सब अन्नदाता हो, हमारे आपके घरों की भिक्षा खा के मैं पड़ा हूँ, और अभी इसी से निर्वाह होता है, मेरे पास क्या पड़ा है, जयराम जी की आपके दिए हुए अन्न से हम पढ़ते हैं, तो फिर आपका अहित करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, हम इतने हम कृतज्ञ हैं जो आपका अन्न खाकर आपका ही नुकसान करें, ऐसा कृतज्ञता मैं नहीं करना चाहता। सज्जनों मेरे दुख होता है, इस वास्ते आपसे कहता हूँ कि आप सेठ करो, भगवान को याद रखो और दूसरों की सेवा करो, सुख पा सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख हो, औरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ जिन्हें आप सुखी हो जाओगे, और औरों को दुख और दरिद्री बढ़ा करके आप धनी और सुखी हो जाओगे, कितना दिन रहेगा ये कितना दिन रहेगा, अपने किया वैसा अपने भोगना पड़ेगा सज्जनों, सच्ची बात है। इस वास्ते कृपा करो, पाप हो गया इतना दिन जिन हो गया, आगे से ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, दूसरों को धोखा देकर धन कमाया वो धन पास में नहीं रहेगा। पहले जमाने में पीढ़ियां तक धनी रहते थे, आजकल 5-7, 10-15-20 धनी होकर 20 वर्ष रहे और पैसे तिरती हो जाते हैं। अन्याय वो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से पैदा हुआ धन 10 वर्ष रहता है, प्राप्ते त्रेकादशे समूलं च विनश्यति, 11वें वर्ष में कहते हैं मूल से नष्ट हो जाएगा, पहले हमारा धन भी चला जाएगा। इस वास्ते कृपानाथ आप कृपा करो, पापों से डरो, जहां तक बड़े दूसरों का हित करो, अहित किसी का मत करो, नुकसान किसी का मत करो, तो आपका भला होगा। भगवान और महात्मा संत अच्छे पुरुष हैं, उनको दया आवेगी, आप अच्छा काम करोगे, और बुरा काम कर तो गुस्सा आवेगा और जमराज के यहाँ दंड बढ़ेगा, पड़े का काम दूतों से धरेंगे मार, दूतों से टूट जाने घमसान से टूट जाए मिठाठ, ये मुश्किल होगा, ये आने वाला है। अन्याय करता उनके लिए ऐसा होता है, यहाँ भी अन्याय करता है, उसे अन्याय होता है तो अपराधी को दंड मिलता है, यहाँ तो धोखा भी दे सकते हो, रुपया दे करके बरी हो सकते हो, वहाँ घूस नहीं चलती, भगवान के यहाँ दरबार में घूसखोरी नहीं चलेगी, आपकी हमारी चतुराई चलेगी नहीं, वहाँ तो जैसा किया वैसा अपने को भरना पड़ेगा। इस वास्ते सज्जनों प्रार्थना है, बहनों माताओं आपसे भी प्रार्थना है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, नाश मत करो, उपकार करो, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम सत्यानाश तो मत करो, इतनी तो कृपा रखो कम से कम। कई जगह धोखा हुआ है, मैंने बातें सुनी है, बीती हुई गर्भ में देखते हैं, मशीन ने कह दिया कि लड़की है, पतन किया तो लड़का दी, ऐसी बात होती है, हुई है, होती है, तो ऐसी हत्या मत करो, कृपा रखो, संयम रखो, जो शरीर भी ठीक रहेगा, भाई बहन आप सबके सब संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सावधान रहो, अंधाधुंध आप चल रहे हो, क्या बात होती है, कितना आचरण भ्रष्ट हुआ है, कितना महाराज चरित्र गिर गया है, इससे कन्याएं विधवाएं वे भी कितनी निशंक हो गई है पाप करने के लिए, क्या करें, कितना अत्याचार अनाचार हो रहा है, क्या दशा होगी, तो कृपा करो, संयम रखो और भजन ध्यान करो और दूसरों का उपकार करो, हित करो, हित करने से आपका हित होगा, और अहित करने से अहित होगा सज्जनों। अभी चाहे न दिखे परंतु अंत में दैत का फल भोगना पड़ेगा, इस वास्ते कृपा करो कृपादत्त, अब पाप मत करो अन्याय मत करो। तो कौन से फायदा का काम किया है सब, नुकसान का किया कि नुकसान और कर ले, ये बुद्धिमान है क्या कि अब हम पाप करना छोड़ देंगे तो पाप तो लग तो गया ही, अब सोचो ही 50 है क्या है और कर ले कोशिश, बुद्धिमान है क्या, नुकसान हुआ है तो इतना नुकसान होता है नुकसान और कर ले। अरे जब पता लगे तो भी बंद करो, किया है जिसका प्रायश्चित करो वो पाप डूब जाए ऐसी करो, दूसरों के सुख पहुंचाने से वो पाप डूबता है, इस वास्ते सुख पहुंचाओ सेवा करो और पाप मत करो अन्याय मत करो। सज्जनों ये मौका है मनुष्य जन्म का, बार बार नहीं पाए ये मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, प्रभु की कृपा से नर पाई नर देह एह बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, दीन जन अन को पसारे पसारी फांसी, अरे कीनी ना नगा नेक नफा नुकसान की, निगम पुराण साधु बान नहीं कीनी कान, एक अभिमानी बान थानी ते टकान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान कीन, साल के सलाह किन जमपुर जान की, जमपुर जाने की क्यों सलाह, ऐसा काम क्यों करो सज्जनों जगह परिणाम दुख भोगना पड़े, पहले से सावधान रहो, यहाँ तो सुख थोड़ा है दुख इसका बहुत जल्द है, अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है, सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है, कितना बड़ा भाई दुख लेते हो सज्जनों, कृपा करो आपको बुद्धि दी है भगवान ने विवेक दिया है तो इससे दूसरों का हित करो उपकार करो, और उपकार न करो सो न सही बना अपकार तो मत करो, नुकसान तो मत करो, कम से कम इतना तो सावधान रहो। बहनों माताएं आप भी चेत करो, क्यों पापों में जा रहे हो, क्यों नरकों में जा रहे हो, क्यों अत्याचार अत्याचार दुराचार व्यभिचार करके नरकों में क्यों जा रहे हो, कृपा करो इतनी बात मानो, आपके घरों का भिक्षुक हूँ मैं तो मेरे पर कृपा करते हो, अन्न आप देते हो, जल आप पिलाते हो, वस्त्र आप देते हो, जाते अंदर टिकट आप देते हो, पढ़ने को पुस्तक आप देते हो, रहने के लिए मकान आप देते हो, इतनी आप कृपा करते हो तितनी और भी कृपा करो, पाप मत करो अन्याय मत करो, जिससे आपका भला हो और हमारा भी भला हो, हमारे को भी अन्न आपके घर का शुद्ध अन्न मिले, नहीं तो अशुद्ध अन्न खाते थे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका भी तो आपका हमारा दोनों का नुकसान है, इस वास्ते कहता हूँ कृपा करो अब पाप मत करो, हो गया जो हो गया, कहते आग लग गई इतना तो बढ़ गया अब बालना छोड़ दे क्यों, और तो सब घरों बालो नाश करोगे, ये कोई बुद्धिमानी है क्या, जितना बच गया उतने ही बचाओ, अभी बचा लो तो अच्छी बात है, अभी भजन में लग जाओ भगवान नाम का जप लग जाओ, भगवान नाम के जप की महिमा चहू जुग चहू श्रुति नाम प्रभाऊ, परंतु कल विशेष नहीं आन हो पाओ, चारों ही युगों में और चारों ही वर्णों के लिए चारों ही वेदों में भगवान की महिमा गाई गई है, उस भगवान के नाम का जप करो, तो कलयुग में विशेष महिमा है नाम की और युग में इतनी नहीं है, सीधा से राम 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 करो कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, इस वास्ते सज्जनों अब होश में आ जाओ, अब विचार करो जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करो, ऐसी बात हो जाए तो दूसरों का उपकार करो हित करो, भगवान का भजन करो कीर्तन करो, गीता का पाठ करो रामायण का पाठ करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, कलो केशव कीर्तनाद कलयुग में भगवान के कीर्तन करने से बड़ा पुण्य होता है, पर वो नहीं करते उन्हें क्या दशा होगी, बड़ा सुंदर मौका अवसर मिला है, ये अवसर निकल जाएगा हाथों से, जैसे आज दिन तक की उम्र चली गई, भजन किया तो उसने कर लिया, सीधी बात है करियो सो काम भजियो सो राम, बदलिया होकर बदलिया, नहीं किया वो तो रीता रह गया, समय चला गया, अब रहा हुआ समय फिर चला जाएगा, इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, लोगों लोगों के उपकार में लगो, हित करने में लगो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही, दूसरों का हित करना होगा, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो अहित करते हैं तो दूसरों का अहित दिखता है, अहित अपना होगा बड़ा भारी, इस वास्ते सावधान हो जाओ, जितनी उम्र बची है इसको भगवान में लगा दो, जितना समय लगा है दूसरों के हित में उपकार में लगा दो, कृपा करो नहीं तो फिर पछताताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछिताय कालहि कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल और कर्म को दोष लगाए, कल युग आ गया हम क्या करें, कर्म हमारे ऐसे ही, भगवान ने ऐसे ही कर दिया, तीनों को दोष मिथ्या दोष है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, भारतवर्ष में जन्म दिया है, जो उत्तम एक देश है आपका, उत्तम जिसमें धर्म है, गंगा जमुना आदि उत्तम नदियां है, भगवान के बड़े बड़े आश्रम है, अवतार दिया भगवान में, पुण्य भूमि है, वृंदावन है, मथुरा है, अयोध्या जी है, अच्छे अच्छे स्थल है जिनमें आप रहो और भगवान का भजन करो, उद्धार करो। हमारे पूर्वज अपना कल्याण कर गए, उसी रास्ते चलकर अपना कल्याण करो, नहीं तो दशा बुरी होगी भाई। काल को दोष दे, कलयुग आ गया तो कलयुग तो पाप करेगा उसके लिए खराब है, जो भजन ध्यान करता उसके लिए कलयुग समयुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा कलयुग का मौका है। भजन करने से इसका महत्व विशेष है, कली विशेष चौंसुक चौंसरी नाम प्रभाव कली विशेष, किंतु उपाय नहीं है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल। चैतन्य महाप्रभु मंगल पे हुआ ने कहा है, नाम में बड़ी शक्ति विलक्षण है। भगवान ने अपने यज्ञ दान तप तीर्थ आदि की शक्ति सब नाम में रख दी है, वो नाम लेने से कल्याण हो जाए। सीधी बात है, राम 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 करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आओ, भगवान का नाम लो। कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेषता से करना बताई गई है, और वो समय आपको हमारे को मिल गया है। व्यापार में जब मुनाफे की बात होती है तो सब तेजी से व्यापार करते तो मुनाफा हो जाता है, माल सस्ता मिलता है, गाड़ी महंगा होने वाला है तो आज नाम सस्ता मिलता है, मुफ्त में मिलता है। कोई हुनर करो पैसे तो किसी की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, पर भगवान का नाम तो राम धड़ी चौड़े पड़ी सभी खेलो आए, दावा नहीं था रामदास जीत से ले जाए, तो इतना चौड़े पड़ा वो भगवान का नाम है, कैसी बढ़िया बात है। तो इसमें सज्जनों सत्य सत्य से लग जाओ, संशास्त्रों को पढ़ो, चेत होगा, होश होगा, नहीं तो बेहोशी में समय चला जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। इस बात से हो गया जितना हो गया, अगर अपना अभी भी चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है, बचा हुआ समय आपका सार्थक हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब बच गया उतना ही बचाओ, जो गया सो तो गया, अब गई सो गई, अब आकर रही को जितनी रह गई है उसको भी भगवान में लगाओ, नहीं तो ये भी हाथ से चली जाएगी, फिर दशा क्या हो गई? आप समझो क्या होगा फिर परिणाम इसका, ये सोचना चाहिए। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, अभी दिखता ऊंधा है, शास्त्र की बात देखो सूदा शीर्ष यथार्थ दिखेगा, दर्पण में दिखता नहीं, मुख ऊंधा दिखता है, ऐसे ऊंधा दिखता है अभी। अधर्मम धर्म मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतान बुद्धि सा पार्थतामसी। अधर्म को धर्म दिखता है, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, हित को अहित, अहित को हित, सर्वार्थान विपरीतान विपरीत दिखता है, ये तामसी बुद्धि है। तो मनुष्य हो आप, शुद्ध कुल में आप पैदा हुए हो, शुद्ध धर्म जिसमें है, ऐसे कलयुग के समय ऐसे भारतवर्ष में आप पैदा हुए हो, आप अपना घराना तो संभालो। किस वंश में आप हो, किस ऋषि मुनियों की संतान हो आप, तो आपको चेत करना चाहिए, हमारे पूर्वज कैसे कैसे संत हो गए, कैसे महात्मा हो गए, कैसे तत्व के जीवन मुक्त हो गए, कितने भगवान के भक्त हो गए, कितने उद्धार करने दुनों के हित करने वाले कैसे कैसे हो गए। वे हुए उस देश में रह करके हमें इतने नुकसान में जावे। तो सज्जनों अब आज से ही विचार करो कि पाप मत करो, ठगाई करने से खुद ठगे जाओगे, देखता है दूसरे ठगे गए, वो तो ठगे थोड़े गए, आप ज्यादा ठगाई करोगे, वो तो पुराने कोई कर्मों का फल है, इस वास्ते उसे नुकसान हुआ है, यार आप नया नुकसान कर रहे हो, ये आपका नुकसान बड़ा भारी होगा। इस वास्ते कृपा कर कृपानाथ अन्नदाता, ऐसा विचार करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। दो बात खास मनुष्य की है, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों को सुख पहुंचाना। ये दो बात मनुष्य में ही है, मनुष्य के सिवाय कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते, देवताओं का भी इसमें अधिकार नहीं है, ऊंचे ऊंचे का भी। ये केवल मनुष्य का अधिकार है कि दूसरों को सुख पहुंचावे और भगवान को याद करे। भगवत भजन करने के लिए शरीर मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पान दुखदाई। स्वर्ग के लिए करो तो वो भी नहीं है, यहाँ तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए करो, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, इसके लिए आप काम करो तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो मोहन नुकसान होगा। ये चेद वेदी सत्यम अस्ति नो चेद यह वेदीन महती विनष्टि। यहाँ अगर ध्यान नहीं तो बड़ा भारी हानि हो जाएगी। बचपन में खेलने में समय लगाते हैं वो अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, परंतु पढ़ाई की है वो आज भी काम आती है। खेल क्या काम आता है बताओ, कितना खेल में समय गया। ऐसे आज भजन स्मरण करो वो आपको काम आवेगा, अरे पापों में और प्रमाद में निरंतर समय बर्बाद कर दिया, बड़ा नुकसान हो गया। ये समय मिला है बड़ा कीमती है, समय को खर्च करके आप विद्वान बन जाते हैं, समय को खर्च करके बड़े कुटुंब वाले बन जाते हैं, समय को लगाकर आप धनी बन जाते हैं। वो समय नष्ट हो रहा है या अपना पतन कर रहे हैं। खर्च क्या हो रहा है कि जिस समय से भगवान मिल जाए, अगर भगवान की भक्ति करे तो भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान कहते मेरे मुकुटमणि है, वो भक्ति आप कर सकते हैं। वो समय आप अन्याय में पापों खर्च कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें चेत करो तो भैया ठीक हो जाएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। तो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ और दूसरों के उपकार में लग जाओ, तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से पद से दूसरों का हित करो। जिस किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए उसमें आपका बड़ा भारी हित होगा, या दूसरों का अहित करोगा तो मुश्किल है, अपना बड़ा भारी अहित हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्य ने प्राप्त किया है कि ये भगवत प्राप्ति के लिए, अगर ये हमारे सुख प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य मिला है, यार भी हाथों से निकल जाएगा तो समय चूक पुनः का पछताने का प्रसाद कृषि सुखाने, हाथों से समय निकल जाएगा फिर पछतावा करने में क्या फायदा। समय है जितने चेत जाओ, अभी तक जो गया वो सब गया, अब रहा हुआ समय है वो भगवान के भजन में लगा दो, भजन में चिंतन में कीर्तन में गीता रामायण आदि के पढ़ने में दूसरों के हित करने में लगा दो। आप लोगों में एक वृत्ति है, मैंने गीता में पढ़ा उसमें दान का अपवर्तन आया है क्षत्रियों के लिए, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। क्षत्रियों में दान देने की प्रवृत्ति आती है, मुझे शास्त्र में ही आता है। मैंने आज मैं देखता हूँ कि आप वेश भाइयों में दान की प्रवृत्ति है, उपकार का काम करते हो, उपकार के मकान बनाते हो, धर्मसभा बनाते हो, तालाब बना देते हो, दुनिया के उत्कृष्ट पाठशाला बना देते हो, जहाँ कहीं शुभ काम कर देते हो, दान में आपका नाम आता है। वो दान आप नहीं करते और क्यों शरीर संग्रह संग्रह में लगे हुए हो तो उसकी क्या दशा होगी। संग्रह तो आप करोगे या लोग खाएंगे उसे माल, क्या फायदा होगा। आप अपने हाथों से दान करो, पैसा दिया है भगवान ने तो इसके द्वारा शुभ काम करो, दूसरों का हित करो, सत साहित्य है उसका प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो, कीर्तन का प्रचार करो, भगवान नाम का जप करो और करवाओ कीर्तन करवाओ तो कितना लाभ हो जाएगा। तो ये समय जितना है वो हाथों से जा रहा है, चला गया वो चला गया, रहा वो भी चला जाएगा, मरता हो तो दुख होगा पश्चाताप, सो परत्र दुख पावे ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये चला गया ऐसे समय और भी बीत जाएगा, तो कृपानाथ कृपा करो, अब अपने पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, हित करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, ये विचार कर दो तो आपका जीवन शुद्ध हो जाए। जैसे साठ पुरुष साठ हाथ नीचे पानी है और आपके पास में लोटा और डोरी है, डोरी हाथ में इतनी सी रह गई और खेच लो तो वो लोटा जल आ जाएगा और बोर पारी आ जाएगी, और इतनी सी डोरी नीचे चली गई तो इतनी नीचे मिलेगी, वो पानी में चली गई पानी के भी ठेस नीचे चले जाएगी, ऊपर की नहीं मिलेगी, उसको निकालना मुश्किल हो गया। तो जब तक आपकी उम्र है, ये बच्ची हुई अब उम्र है, इस उम्र को भी भगवान में लगा दो तो आपका जीवन सफल हो जाए, सबका सब पानी मिल जाए आपको और औरों को भी, उपकार करने वाला है, उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार करता है। बीड़ी पीने वाला केवल को बीड़ी सिखा देता है, तम्बाकू पीना औरों को, भांग पीने वाले औरों को सिखा देता है, और भजन स्मरण गीता करने वाले औरों को भी गीता सिखा देता है। तो आपके द्वारा औरों का भी हित हो, आपका भी हित हो, और ये समय अगर चला गया तो बड़ी भारी आश है मनुष्य की, इससे मनुष्य बना है। अगर ये नहीं है तो मनुष्य बना क्या हुआ? जिसको हित नहीं करता तो भगवान को याद नहीं करता तो क्या दशा होगी? ये जरा आप सोचो, आप ठंडे हृदय से सोचो, मेरे कहने मात्र से मान लो, ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा आग्रह नहीं है, आप स्वयं सोचो कि आपका हित किस बात में, आपका कल्याण किस बात में, सोचो तो आपको मालूम होगा। तन कर मन कर पसंद कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक जरत है देख तुलसी मुख। शरीर तन मन वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देता उसके मुख देने से पुण्य होता है, यार दुख देने वाला का तो मतलब मुख देने से पाप लगता है। धर्मो विभेद थे युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। ऐसे आप शुभ काम में लगो तो आपके दर्शनों से, आपके स्पर्श से, आपके भाषण से, आपके संग से दुनिया का हित होगा, क्योंकि आपके हृदय में हित निवास करता है। ते प्राप्तमंति मामे सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति होती परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, और हित करना सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारे लगोगे, नुकसान करने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि वो नुकसान कर रहा है। इस वास्ते आप लोगों का उपकार करने के लिए अपना धन है, संपत्ति है, वैभव है, जितना है सबका हित करने में लगाओ, जितनी उम्र बस गई है इसके में लगाओ। आप उसमें प्रेम रखो, माता बहनों को कहता हूँ ध्यान देकर सुनो, घर में आपस में प्रेम रहेगा तो आपको शांति मिलेगी, और घर में द्वेष होगा, कलह हो जाएगी तो अशांति होगी, दुख होगी, जलन होगी। इस वास्ते एक एक का उपकार करो। दो बातें, काम धंधा करना हो आप इसमें छीना झपटी करो कि मैं काम करूं, सेवा मैं करूं, ऐसे लो, और आराम दूसरों को दो। आराम लेने के लिए नहीं है ये शरीर सेवा करने के लिए है। धन संपत्ति मिले है वो अपने के लिए नहीं, दूसरों के हित करने के लिए है, तो उसके द्वारा दूसरों का हित करो, सेवा करो, घर में प्रेम रखो, खटपट मत करो ने दो। दिलानी जिसानी आपसे लड़ पड़ेगी, सास और बहू लड़ेगी, नंद भाभी लड़ेगी, तो क्या दशा होगी? घर में कड़ा हो जाएगी, उसकी अलाय लगेगी तो हृदय में संताप होगा, और अगर ये नरक भोगना पड़ेगा तो मौका मिला है, सेवा करो। सेवा मैं करूं आराम आप करो, वो करे सेवा मैं करूं आप आराम करो, तो दूसरों को आराम दो तो सबको आराम मिलेगा। अरे स्वार्थ करो, मेरे को सुख हो, मेरे को सुख हो, ये वोट का जमाना है। 100 आदमी हो, 100 आदमी चाहे गए हमारे द्वारा 99 को मैं सुख पहुंचाऊं, ऐसा भाव होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। एक एक के मन में मेरे सिवाय 99 मैं सुख पहुंचाऊं तो न्याय क्या हुआ? सब 100 के 100 सुखी हो जाएंगे। 100 ये सोच रहे मेरे को सुख ये चाहे नरकों में चाहे चूल्हे में पड़े, ऐसा होगा तो सबके सब चूल्हे में पड़ेंगे। ऐसा समझ लो ना, बढ़िया वर्षा तो समझ लोगे ना, हित करने से क्या होगा, अहित करने से क्या होगा, नतीजा क्या होगा? तो परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, इसके समान धर्म नहीं है। तो घर में भी जो दड़ी बूढ़ी माताएं हैं उनकी सेवा करो, बूढ़ी दादी माँ है उसकी सेवा करो। सेवा करने से वो माँ जी भी अच्छी बात कहेगी, और माँ जी सुख पाओगी तो आपका कल्याण होगा, और माताएं बूढ़ी बूढ़ी आशीर्वाद देगी। हमारे एक मित्र शंकरानंद जी वो कहते थे कि बूढ़ी माताएं आती तो मैं जल खेच करके देता तो इतनी खुशी, तू भगत हो जाए, तू जीता रहे, राजी हो जाए। बूढ़ी माताएं बेचारे जल खींचना परिश्रम पड़ता है, तो इतनी माताएं खुश हो जाती आशीर्वाद देती, ऐसे साधु बन गए वो। तो माताओं का आशीर्वाद लो आप बूढ़े बड़ों का सेवा करके, और नहीं तो क्या होगा, उनका हृदय जलेगा तो आपके जल्दी पैदा होगी भाई, पाप लगेगा, अन्याय लगेगा। घर में से शुरू करो ये काम, अपने घर में से ही शुरू करो, दूसरों की सेवा करो, दुख संताप अपने पर ले। रसोई बनाओ तो सबसे पहले छोटे बालक है, बूढ़े हैं, रोगी हैं, जापायत है, मेहमान आए हुए हैं, नई बीनरी आई है, उनको भोजन कराओ पहले। ये नहीं भोजन कैसे करा, मैं छोरा जी में तो छेरे जी में गई तो चोरी आई है, उसको जिमाने के लिए बेटे को बुलाओ, पहले उस जिमाओ और बिजनी को जिमाओ, आप लाड रखो तो वह आप फिर सेवा करेगी, और आप पहले लाड नहीं रखोगे तो कभी तो बात करें, कभी का सासू का तो कभी बहू का, उसका सहारा होगा तब क्या बात करेगी, जब उसकी स्वतंत्रता हो जाएगी तो। माइयों मैंने देखा है कई माताएं उपकार करती है, उनके पास चीज आती है, मिठाई आती है तो लड़के राजी हो जाते हैं, कूदने लगते हैं कि अब मिठाई मिलेगी, और कई कई माताएं कंजूस होती है, वो लड्डू आदि आते हैं वो दुकान धर देती है, पत्थर से फोड़ कर खाते हैं, फिर ऐसे सूख जाते हैं, और उनके हाथ में मिठाई आते ही छोरा डर, बस आज तो गई कुएं में, ये तो नहीं मिलने की नहीं है, उनके हृदय में धक्का लगता है। अगर उदार बहन मात के माँ के पास में धन आ जाए तो छोरा कूदने लगती है तो हमारे मिलेगा, तो हमारे को मिलेगा। यार माताएं पक्षपात करती है, अपने छोरे को तो मिठाई खिलाती है औरों को नहीं, तो छोरे आप समझो समझते नहीं, बहुत समझते हैं वे, छोटा घुटनों के बल चलता है, घुटा लिया चले वो भी समझता है, जब हित होता जाता है, आप प्रेम की दृष्टि आपकी गोदी में आ जाएगा, और आपकी दृष्टि ठीक नहीं हो तो चट लौट जाएगा, वो समझता है, आप समझते हो भोला है, वो भोला नहीं है, अपनी दृष्टि में अच्छा है। हाँ एक मोर एक पताशा कर दो तो पताशा लेगा, तो वो अपनी दृष्टि से बढ़िया चीज लेता है, घड़िया नहीं देता है, तो वो कितना प्यार करोगे आप जितना वो सर राजी होगा, तो घर के सब बालक है उनमें अपने छोरे का पक्षपात न रख करके सब बालकों का पालन करो, तो ये बालक कह गए हमारी ये तो माँ ही है प्रेम सेवा करने वाली। लड़का मिला था एक कलकत्ते में यहाँ, तो वो कहता था मैं तो भौजाई की गोदी में पढ़ा हूँ, मेरी भाभी ने मेरे को पाला है, तो मेरी भाभी तो माँ है, भाव हो जाता है उनका, अब भाभी का भाव नहीं होगा, तो ऐसा आप पालन करो, फिर ये क्या करती है बढ़िया चीज है, चोरने में लुका कर सोरे को बैठा ले खा ले उखड़ाती है, सोरों को सब माल मुझे खटाती है, तो ये हमारे को नहीं देती, बड़े हो जाए यार सोरा कपूत होगा, जिसका स्वार्थ होगा उसका कपूत होगा, अब दुख पाती है, दूसरी सेवा नहीं करती, तेने छुका छिपा छिपा करके खड़ा है, आप देख ले 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 इसका फल, यह दशा हो गई। या सब छोरों को दोगे तो सब छोरा आपको माँ मानेंगे, कहते हमारी माँ ही है, ये तो हमारा पल है, माई सु खाई प्यारी है, जो जाए तो प्यारा लगता है, तो ऐसे आप उत्तम कुल में रहो और ऐसा प्रचार करो, कितनी बढ़िया चीज है, सब बच्चों का आदर करो, और बच्चों के आदर करने से आपस में आपका प्रेम हो जाएगा, देवरानी जेठानी ननंद सासू इतने तो बालक होते हैं, कई देवरानी के बालक है, कई जेठानी के बालक है, कई ननंदों के बालक है, कई आपके बालक है, कई सासू के बालक है, पांच ही तो होते हैं, कोई पंद्रह बीस पचास होते हैं, इनमें अपने बालकों की अपेक्षा दूसरे बालकों का आदर ज्यादा करो, पक्षपात छोड़ो, उल्टा दिखता है भाई, दिखने में तो मेरा बालक है, पर सेवा करने में दूसरों की पहले करो, दिखने में त्याग दिखता पर फायदा बहुत होगा, तो इस बात दूसरे बालकों का आदर करो, प्यार करो, स्नेह करो, नई बहू आई है उसकी महिमा करो, निंदा मत करो, उसे घर से मिठाई आवे फल आ जाए तो थोड़ा भेजा है तो निंदा करती है, इतना भेजा है मेरे बेटे की बहू आई है, बोले इतना बड़ा भाव में क्या करें, इतना सब भेजा है, ऐसे निंदा करोगे तो छोरी तो सुन तो लेगी कि छोटी बेचारी क्या करे, परंतु तो आप बूढ़ी हो जाओ रे बेचारी तब क्या दशा होगी, ऐसे मैंने कर देखे, अरे उसे कहो कि वो मिठाई तो आई है, फल आया है और थोड़ा आया है, तो अपने वहाँ मिठाई बनाओ और अपने फल ला करके फिर बांटो सब घर में, हमारे बहू आई है इतनी संपत्ति ले रही है, तो उसकी महिमा हो जाएगी, कि बाबा जी महिमा तो हो जाएगी, मैंने खर्चा लग देगा घर का, पर घर में खर्चा लग जाएगा, मिठाई में खर्चा लगा जाए, कर 100-200 रुपयों में एक मनुष्य खरीदा जाता है, सस्ता है महंगा नहीं है, आप सोचो बढ़िया बुद्धि में सोचो, तो वो बहू आपकी हो जाएगी, कि देखो मेरी माँ की महिमा के लिए मेरी सासू ने मिठाई बना कर लोगों में बांटी, हमारे बेटे की बहू आई है वो संभाल लाई है, ले इतना फल तुम लोग सभी सबको पुटम में देवे, तो कितनी बढ़िया हो गई, 100-200-500 रुपए लग जाएगा तो सस्ता ही पड़ेगा, वृद्धावस्था में वो सेवा करेगी, वैदों माताओं में बड़ा पक्षपात है, छोरा जन्म जाए तो राजी होती है, छोरी जन्म जाए तो नाराज हो जाती है, छोरी गिरा देती है, अरे छोरी है वो जगत जननी है, मातृशक्ति है, उसको मामूली मत समझो आप, वो माँ बनने वाली है, माँ ऐसी मातृशक्ति है, वो छोरा इतना न्याल करेगा जितनी छोरी आप वो करेगी, पर खर्चा लगता है तो खर्चा दहेज लेना छोड़ो, छोरियों को क्यों मारती हो, दहेज नहीं लेंगे भाई, अपने लड़का पढ़ाएंगे हम दहेज नहीं लेंगे, तो त्याग होगा आपका। तो आपके लड़के भी ऐसे पढ़े, कई घर मैंने देखे हैं, कई सुनी है, जो इस तरह से नहीं लेता है उसकी लड़कियों का संबंध भी बिना देखे होता है, हुआ है। आप लेते हो वो भी लेंगे, दोनों दुख पाओगे। आपकी बेटा है आप धन लेते हो तो दूसरा बेटा है आपकी बेटी पे आप धन देना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हो तो वो भी त्याग करेगा। त्याग करने से त्याग सीखते हैं। तो ऐसा आप उसमें व्यवहार करो, जो सुंदर व्यवहार हो जिसका नतीजा आपके लिए लोगों के लिए बढ़िया होगा और महिमा भी इसी में आपकी होगी। स्वार्थ में आपकी महिमा नहीं होती, दूसरों का हित करो, उपकार करो तो आपकी महिमा होगी, आदर होगा। सीता जी जब आई है ब्याह करके तो महाराज दशरथ जी ने रामायण पढ़ो, दशरथ जी ने भूप का राजा जनक की जा भाट जी में बरणी, जैसे भाट करे जो प्रशंसा करी कि जनक महाराज ने ये किया, जनक महाराज ने ये किया। छोटी सीता जी अगर लड़कियां सुनती है तो वो राजी होती है कि महाराज जी हमारे पिताजी कितनी महिमा करते हैं, कितना प्रसन्न होगी वो छोरियां। तो कहा कि इन लड़कियों को बधू लड़के नहीं पर घर आई, पर घर कैसे अपने घर आई है ये, पर घड़ी दिखता है माँ तो पीछे रह गई, अब यहाँ आ गई छोरिया। तो कौशल्या जी अपनी गोदी में लेकर सोई है, रामायण पढ़ो आप, प्यार किया स्नेह किया है। के कई माता का जो बड़ा भारी बढ़िया महल था वो मुख देखाई में सीता जी को के कई का महल के कई ने दिया है, मेरी बहू आई है। जब उसने कहा है कि मैं जहाँ जन्मू वहाँ हो श्री राम पुत पतो हूँ, मेरे पतो और पुत्र राम और सीता मेरा पुत्र बेटा मेरे बहू बने, ऐसी मांगती है वो, ऐसा स्नेह था। वो तो सरस्वती के खराब करने से मन खराब हो गया उसका, नहीं तो उसका स्नेह बहुत था। कि कई ने खुद ने कहा है मैं परीक्षा कर देखी है, मेरे कर करे स्नेह अभिषेक ही राम जी कौशल्या से भी मेरा स्नेह ज्यादा करते हैं। के यहाँ रहते थे खेलते थे, भरत के साथ स्नेह ज्यादा था तो यहीं खेलते यहीं सो जाते यहीं खेलते थे। अब किसी माँ के पास में रहो तो माता से बरोबरी हमारी माँ है, के माँ सुमित्र माँ कौशल्या भी माँ, तो भरत जी के साथ मित्रता होने से भरत जी के महल में वही ले जाते, के महल में वही खेलते थे वही सो जाते। के बड़ा प्यार करती थी, बड़ा स्नेह करती पालन करती थी। इस बात राम जी ने के कही की सदाई में मैं गई है के कही, और सीता जी ने कभी के कही की निंदा नहीं की है। वनवास में रहते थे तो एक समय स्नान करने को सुबह उठे पंचवटी में तो ठंडी हवा चलती थी, तो राम जी ने कहा कि देखो भैया लक्ष्मण अभी भरत सरजू में स्नान करने जाता होगा, ये ठंडी लगती है उसको ठंडी लगती होगा। ऐसे राम जी ने कहा भरत की याद आती है बार बार, भाई भरत जैसा भाई कहाँ है, ऐसी याद आती थी। तो लक्ष्मण जी कहा कि माँ भाई जी केकई ने क्या लाभ उठाया, खुद विधवा हुई अपसर हुआ आपको जंगल में भेजा उसकी क्या लाभ हुआ, उस खोटी बुद्धि हुई न समय मध्य माता कर रही तब्या कदाचन, कहते मेरी पिछली माँ की केकई की निंदा मत करना कभी भी। तस्वीनाथ भरत से कथा करू, भरत की कोई कथा सुनाओ भाई, भरत की बात सुनाओ, केकई के बागे निंदा मत करो। सबसे केकई माँ से पहले मिले, चित्रकूट में गए तो केकई के पास पहले गए, माँ को कहीं दुख न हो जाए कि मैं वन में निकाल दिया, राम नाराज हो गए। वनवास आए तो सबसे पहले केकई महल में जाकर पगम पड़े कि माँ आगे बेटा, हाँ माँ बड़े खुशी से आ गया मैं बड़ी प्रसन्नता से। तो केकई माँ का आदर ज्यादा किया, उमा संत की है पढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, जो भला करती वे संत लोग होते हैं। तो ऐसा राम जी का आचरण है वो अपने आचरण में लाओ। किसने अपने भाइयों के साथ में स्नेह किया है, रावण के उठ मार करके विभीषण हो गया, उधर बाली को मार करके सुग्रीव राजा हो गया, तो ये दोनों साथ में आए, यहाँ राम जी का देखा बर्ताव तो भाई के साथ कैसा बर्ताव, तो उनके आंसू आने लगे कि हमारे भी भाई था, हमारा भाई रावण था, हमारा भाई बाली था, उसी साथ हमने क्या विचार किया, और ये भरत जी महाराज राम जी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो उनके हृदय में भी बात समझ में आई, तो भाई अच्छा बर्ताव है उसका अच्छा असर पड़ता है, बुरा बर्ताव का बुरा असर पड़ता है। तो पक्षपात छोड़ कर सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, उदारता बर्ताव को चित्त में शांति मिलेगी, त्यागा शांति निरंतर। इसे नाम त्याग है। साधु भाव बन जाना त्याग, वो तो नकली त्याग है, ऊपर से त्याग का स्वांग है। असली त्याग तो स्वार्थ का त्याग करके सेवा में है। वो आपस में करो बहनों माताओं, मौका मिल गया है, कृपा करके भगवान ने दे दिया है तो अच्छा काम करो। अब मैं क्या करूं, बातें तो बहुत सी है, समय इधर हो गया है, जाना हमें पड़ेगा, 3 मिनट के लिए बच चुके हैं, क्या करें। कोई बात हो आपको पूछ रहा हूँ तो पूछ लो भाई, जल्दी जाने वाले हैं।